नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा
और साथ में मैं हूं विनीता।
दोस्तों आज हम आपके समक्ष 16 से 30 अप्रैल का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य हर भारतीय के लिए हवाई यात्रा को सुगम बनाना है। उड़ान योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। अब भारत का लक्ष्य लीडिंग एविएशन हब बनने के साथ एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां आसमान सबके लिए खुला हो, जहां दुनिया के हर व्यक्ति का उड़ने का सपना पूरा हो। इस 27 अप्रैल यानी आज ही उड़ान यात्रा की शुरुआत के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी संदर्भ में विमानन क्षेत्र में बीते एक दशक में हुए परिवर्तनकारी सुधार पर ही इस बार के अंक की आवरण कथा है। इसलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं विमानन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार।
साथियों, आजादी से लेकर 2014 तक देश में छोटे बड़े एयरपोर्ट सिर्फ 70 थे, 70 ज्यादातर सिर्फ बड़े शहरों में हवाई यात्रा की व्यवस्था थी, लेकिन हमने हवाई यात्रा को देश के छोटे छोटे शहरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए हमने दो स्तर पर काम किया। पहला, हमने देश भर में एयरपोर्ट के नेटवर्क का विस्तार किया। दूसरा, उड़ान योजना के जरिए सामान्य मानवी को भी हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला। इन प्रयासों का अभूतपूर्व परिणाम आया है। बीते 8 वर्षों में देश में करीब 72 नए एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं। अब सोचिए, आजादी के बाद 70 साल में 70 के आसपास एयरपोर्ट और इन दिनों 7-8 साल में नए और 70 एयरपोर्ट, यानी अब भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। उड़ान योजना ने जिस तरह देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा किया है वो तो वाकई किसी यूनिवर्सिटी के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए अध्ययन का विषय है।
श्रोताओ, इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में बिहारी वीर बांकुरा बाबू कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि फ्लैगशिप में पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई स्वामित्व योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय और पखवाड़े भर के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इनसाइड में मन की बात और बैक कवर में विश्व विरासत दिवस पर पिछले 10 वर्ष में विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के 13 विरासत स्थल इस अंक की विशेषता है।
समाचार सार के अंतर्गत दुनिया मांगे भारत की चाय कॉफी। चाय निर्यात में भारत ने हासिल किया दूसरा स्थान। 2024 में 25.4 करोड़ किलो चाय का किया निर्यात। पीएम उज्ज्वला योजना में दुगुना हुआ सिलेंडर रिफिल। जैम पर 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन शुरू। और भारत ने विकसित की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन जैसी जानकारियां शामिल है। वहीं व्यक्तित्व की श्रेणी में बाबू कुंवर सिंह, जिन्हें बिहारी वीर बांकुरा भी कहा जाता है, उनकी जीवन गाथा को स्थान दिया गया है। 80 वर्ष की जिस उम्र में अधिकतर लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, बिहार के एक रण बांकुरे ने वीरता की एक ऐसी अमर कहानी लिख दी जो युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। ये वीर गाथा है बाबू कुंवर सिंह की, जिनके बारे में खुद ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने लिखा था। उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई की। ये गनीमत है कि युद्ध के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 के करीब थी। अगर वो जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ जाता।
बचपन से ही मेधावी कुंवर सिंह हथियार चलाने का रोज अभ्यास करते। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कुंवर सिंह आगे चलकर आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा ध्रुव तारा बन जाएंगे जिनकी वीर गाथा सदियों तक युवाओं को प्रेरणा देगी। बात जुलाई 1857 की है। पटना में क्रांति के बिगुल के बीच उनके नेता को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। इससे गुस्साए दानापुर रेजिमेंट के भारतीय सिपाहियों ने लड़ाई छेड़ दी और जगदीशपुर की तरफ कूच किया। खबर मिलते ही बाबू कुंवर सिंह तुरंत अपने महल से निकले और इस सेना का नेतृत्व संभाल लिया। कुंवर सिंह ने आरा से लेकर यूपी के आजमगढ़ तक अंग्रेजों को खदेड़ दिया। छापामार युद्ध के सबसे प्रवीण योद्धा माने जाने वाले वीर कुंवर सिंह का साहस ऐसा था कि 8 महीनों तक अंग्रेजी हुकूमत उनसे मुकाबला करने से बचती रही। इस बीच बाबू कुंवर सिंह अपने बहादुर सिपाहियों के साथ बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर में विप्लव के नगाड़े बजाते रहे। हालांकि अंग्रेजों ने लखनऊ पर दोबारा कब्जे के बाद आजमगढ़ पर भी कब्जा कर लिया। इस बीच कुंवर सिंह बिहार की ओर लौटने लगे। जब वो जगदीशपुर जाने के लिए गंगा पार कर रहे थे तभी उनकी बांह में एक अंग्रेज की गोली लगी। कहा जाता है कि उन्होंने तलवार से अपना हाथ काटकर नदी में प्रवाहित करते हुए कहा, लो गंगा माँ, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। इसके बाद भी कुंवर सिंह रुके नहीं, उन्होंने जगदीशपुर किले से यूनियन जैक को उतार कर ही दम लिया। हालांकि बाद में वो अपने हाथ के गहरे जख्म को सहन न कर पाए और अगले ही दिन 26 अप्रैल 1858 को मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया।
भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये गांव ही है जो हमारे जीडीपी से लेकर विकास तक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए गांवों के आर्थिक विकास के साथ सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना इसी सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई स्वामित्व योजना से गांवों में संपत्ति के अधिकार का रिकॉर्ड मिला। ग्रामीण आबादी क्षेत्र के आवासीय संपत्तियों के दस्तावेजीकरण के लिए शुरू स्वामित्व योजना में संपत्ति कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। संपत्ति कार्ड मिलने की वजह से संपत्ति के मुद्रीकरण और बैंक लोन तक पहुंच, संपत्ति से संबंधित विवादों में कमी, व्यापक और ग्राम स्तरीय योजना बनाने में आसानी जैसे लाभ सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये योजना ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। योजना की सफलता की कहानी पत्रिका में शामिल है।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना तो उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही, जबकि भारत ने मोनोपोली नहीं बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। और यही वजह है कि आज विश्व की दृष्टि भारत पर है। विश्व भर के लोग भारत के प्रति नई जिज्ञासा से भरे हैं। टीवी 9 के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय के साथ साथ वैश्विक दर्शक भी तैयार हो रहे हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। देश के युवा तेजी से कौशल प्राप्त कर रहे हैं जिससे नवाचार को गति मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रथम भारत की विदेश नीति का मंत्र बन गया है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं जिनमें से 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार देश के लिए तेज गति से विकास कार्य में लगी है। इस दौरान देश निर्भरता से आत्मनिर्भरता, आकांक्षा से उपलब्धि और हताशा से विकास की ओर तेजी से बढ़ा है। एक दशक पहले गांवों में शौचालय की समस्या के कारण महिलाओं के पास सीमित विकल्प थे, लेकिन आज स्वच्छ भारत मिशन ने इसका सम्मानजनक समाधान किया है। टीवी 9 शिखर सम्मेलन की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है।
देश भर के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनर को महंगाई से राहत देने की दिशा में मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर बढ़ाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी। साथ ही किसान और पशुपालकों को मजबूती देने के लिए डेयरी विकास कार्यक्रम एवं गोकुल मिशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर की जो अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है वो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ये मूल वेतन पेंशन के 53% की मौजूदा दर में 2% की वृद्धि है, यानी महंगाई की भरपाई की जा सके। इससे लगभग 48.66 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ये वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की जानकारी पत्रिका में विस्तार से पढ़ी जा सकती है।
गौ रक्षा और प्रकृति के प्रति प्रेम की प्रतिबद्धता रखने वाले गुजरात के भरवाड़ समाज ने अपनी विरासत और परंपराओं को संरक्षित रखते हुए आधुनिकता को अपनाया है। कड़ी मेहनत, निरंतर प्रगति और सहनशीलता की बदौलत ये समाज कलम और कंप्यूटर के साथ आगे बढ़ रहा है। परंपराओं को कायम रखने के लिए भरवाड़ समाज द्वारा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आधुनिकता और परंपरा के सामंजस्य के लिए भरवाड़ समाज की सराहना। भरवाड़ समुदाय को सच्ची दिशा और असीम प्रेरणा देता है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने समुदाय से अपने मवेशियों के लिए नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत का जिक्र भी उन्होंने किया। इस कार्ड से व्यवसाय के विस्तार के लिए कम ब्याज वाले ऋण प्राप्त करने में उन्हें मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने भरवाड़ समुदाय से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया और पौधरोपण के महत्व को देखते हुए उन्होंने समुदाय से अपनी माता के सम्मान में वृक्ष लगाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया तो प्राकृतिक खेती के महत्व पर भी बल दिया। साथ ही भूमि को फिर से जीवंत करने के लिए इस प्रथा को अपनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम की जानकारी हमारी इस पत्रिका में शामिल है।
भारत सरकार क्रिएटिविटी की नई विधाओं पर काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 की तैयारी में कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जो मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक प्रमुख पहल है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के सहयोग से वेव्स 2025 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अगर आप उद्योग के पेशेवर निवेशक, निर्माता या नव प्रवर्तक हैं, तो विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ने, सहयोग करने, इनोवेशन करने और योगदान देने के लिए आपको सर्वोत्तम वैश्विक मंच प्रदान करेगा। वेव्स भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे इसकी स्थिति कंटेंट निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार केंद्र के रूप में मजबूत होगी। फोकस में आने वाले उद्योग और क्षेत्र में प्रसारण, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, ध्वनि और संगीत, विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जनरेटिव AI, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी XR शामिल है। वेव्स में 100 से अधिक देश के प्रतिभागी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 117वीं कड़ी में कहा था कि भारत की क्रिएटिव टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। देश में पहली बार वेव्स समिट का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन से जुड़ी सभी जानकारी आपको पत्रिका से मिल जाएगी। श्रोताओं, उड़ान की यात्रा के आज 8 वर्ष पूरे हुए हैं और कार्यक्रम के समापन से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार।
मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहता हूं, तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन था कि ये भारत में कैसे संभव है। लेकिन हम आगे बढ़े और उड़ान योजना शुरू हुई। आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया। एक Tier 2, Tier 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बनाया और दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाई। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी है, इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं, जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा
और मैं विनीता।
दीजिए इजाजत।
नमस्कार।